तीन व्यंकटेशगिरी से आए हुए व्यंकटेश। अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे नेवासा नामक एक तहसील का गांव है। वहां मेरे पिताजी के दादाजी सखाराम पंत नेवासकर ये सुखवस्तु ब्राह्मण गृहस्थ रहते थे तथा वहां के व्यंकटेश्वर मंदिर में पंडिताई किया करते थे। यह पंडिताई उनके घराने में परंपरागत चलती आई थी। आगे कुछ कारणवश मंदिर की व्यवस्था वगैरह अपने भाइयों को सौंपकर वे पुणे आए और वहां बुधवार पेठ में घर खरीदकर वही के निवासी हो गए। वे पुराने समय के बड़े हिंदू धर्माभिमानी व व्यंकटेश्वर के कट्टर भक्त थे। मेरे पिताजी की ओर से मैंने धर्म भोलेपन की एक हकीकत सुनी थी, वह इस प्रकार है। उनके दादाजी ने एक रात एक सपना देखा। सपने में उनके पास एक महासाधु आया और उसने कहा, मद्रास प्रांत में त्रिचन्नापल्ली के पास व्यंकटगिरी नामक एक पर्वत है, वहां पर तू जा। पर्वत पर व्यंकटेश्वर का एक बड़ा मंदिर है। उसके दाहिने ओर एक वृक्ष है जिसके नीचे खोदने पर तुझे एक चावल का बस्ता मिलेगा, जिसके खोलने पर तुझे व्यंकटेश्वर की मूर्ति मिलेगी। वह मूर्ति लेकर तू आ और जिस स्थान पर तू सोया है उसी स्थान पर उसकी स्थापना कर। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। इस दृष्टांत से वे बेचैन थे, यहां तक कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। वे इस दृष्टांत पर विचार करते थे। हिमालय से लेकर दक्षिण में रावण की लंका तक जाने के लिए आज जैसी साधन सामग्री रेल आदि है, उन दिनों में नहीं थी। इतनी दूरी की यात्रा पैदल ही करने की उन्होंने ठानी तथा 8-15 दिन के अंदर ही वे घर के बाहर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें करीब 3 महीने लगे। इतने लंबे सफर के दौरान उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शारीरिक क्लेश हुए, जंगल में से गुजरना पड़ा। फिर भी उनका मानना था कि ऐसा किए बगैर ईश्वर प्राप्ति न होगी। दृष्टांत के मुताबिक उन्हें इच्छित मूर्ति मिली, ऐसा उनका कहना है। यह कितना सच है वे स्वयं ही जाने। इतना सच है कि वहां से लौटने के पश्चात उन्होंने अपने बुधवार पेठ वाले घर में उस मूर्ति की स्थापना बड़े आदर के साथ की। वह मूर्ति लगभग 3 फुट ऊंची, 1.5 फुट चौड़ी तथा 1 फुट मोटी थी। उसके लिए उन्होंने पैसे जमा करके एक मंदिर तथा मंडप बनवाया। पुजारी को रहने हेतु मंडप में ही उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया। मंदिर का खर्चा चलने के लिए उन्होंने पेशवा सरकार से कुछ मदद ली तथा शहर के नामी रईस लोगों से भारी अमानत प्राप्त की। इस प्रकार सालाना 700 रुपयों की आमदनी उन्हें इस कार्य हेतु होने लगी। उस समय से लेकर मंदिर की व्यवस्था तथा पंडिताई का काम हमारे घराने में आज तक चलता आया है। जिस व्यक्ति की बारी आती थी उसे एक बार निश्चित रूप से दक्षिण की यात्रा करनी पड़ती थी। उस सफर में होने वाला खर्चा पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, पंढरपुर, बार्शी वगैरह स्थानों में रहने वाले व्यंकटेश्वर भक्तों से जमा किया जाता है। इस चंदे को कानगी कहते हैं। इस यात्रा से लौटते समय वह व्यक्ति मनोहर नामक प्रसाद साथ में ले आता है। यह प्रसाद चावल, घी तथा गुड़ से बनाया जाता है। यह प्रसाद साल भर खराब नहीं होता। यह प्रसाद उसे हर संभव रीति से अलग अलग स्थानों में भेजना पड़ता है और लोग उसे आदर भाव के साथ स्वीकार करते है। यह प्रथा लगभग 250 सालों से प्रचलित है। पुणे जिले में लोनावला से पूर्वी दिशा में 5 मील दूरी पर कारले नामक गांव है। यहां की लेनिया दर्शनीय है तथा वहां की देवी की यात्रा हर साल मनाई जाती है। इस यात्रा में अन्य लोगों की अपेक्षा मुंबई तथा आसपास के कोली लोगों की विशेष भीड़ रहती है। यह यात्रा लगभग 15 दिनों तक चलती है। वहां से 2 मील की दूरी पर एक किला है जिसे लोहगढ़ संज्ञा दी गई है। किले के नीचे एक खिंड है तथा लोहगढ़ पर्वत के आमने सामने दूसरे पर्वत की चोटी पर राजमाची नामक किला है। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय ये किले दिखाई पड़ते हैं। लोहगढ़ पर चढ़ने का मार्ग इतना कठिन नहीं है। गढ़ के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद भी है तथा प्रतिवर्ष वहां पीर की भी मेला लगता है। गढ़ का वातावरण तथा वहां का पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है।